देवियों सज्जनों, आज हमारे समाज में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत के 1947 अगस्त 15 को भारत इंडिपेंडेंट हुआ, पर जो रियल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, उसकी नींव 1950 जनवरी 26 को रखी गई, जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और ऑफिशियली भारत आज रिपब्लिक नेशन के रूप में अनाउंस्ड हुआ। आज और भी दो महापुरुषों के दिन है। आज के दिन जनवरी 28 जो कि आज ही है, लाला लाजपत राय, जो कि इंडिपेंडेंट संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाया और आर्य समाज के भी बहुत बड़े कर्णधार थे, जो लाल बाल पाल तीन मूर्तियों की भारत के आजाद की संग्राम में आप सुनते हैं, उनमें से ये लाला लाजपत राय है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी लीडर रहे। इंडिपेंडेंट मूवमेंट को तो अलग है, जो नेशनल मूवमेंट, जो नेशनलिस्टिक व्यू, अपनी देशभक्ति को जगाने का जो भाव, हिंदू धर्म के जो रिफॉर्म मूवमेंट चलते थे उसका भी वो लीड करे आर्य समाज के थ्रू, और आखिर में ब्रिटिश के पुलिस के लाठी चार्ज में मार खा करके वो मारे गए थे। तो आज भी उनका जयंती है और इस हफ्ते और एक महापुरुष का जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम सब बहुत ज्यादा परिचित हैं। 23 जनवरी 1897 को जिनका जन्म हुआ, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक नई दिशा देने वाले एंड फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं, जिन्होंने गढ़ा और एक अनोखे तरीके से भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। इन दोनों महापुरुषों का जन्मदिन है तो इस अवसर पर हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। पर मुझे आज कुछ और लोगों के बारे में चर्चा करनी है, इसीलिए मैं इन दोनों के बारे में आज ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, आप कभी करेंगे। देवियों सज्जनों, अथर्ववेद का ये बड़ा सुंदर मंत्र है, वो कहता है कि राष्ट्र महापुरुषों के लोगों की तपस्या से बनता है। तपस्या मतलब जहां लोग सैक्रिफाइस करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई लाइफ सैक्रिफाइस करे या पैसा सैक्रिफाइस करे, अलग अलग तरीके से देश के लिए कुछ करने का जो भाव है जब लोगों में होता है, लीडर्स में होता है, सब में होता है, तो कोई राष्ट्र बनता है। यह अथर्ववेद का बड़ा सुंदर मंत्र है। और कोई भी देश सिर्फ पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट से नहीं बढ़ता, उस देश के हर नागरिक किस तरह के कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए, उसे देश आगे बढ़ता है। हम 69-70 साल पहले आजाद हुए और पिछले 70 साल में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है अलग अलग चुनौतियों के साथ। आज हम उन लोगों की थोड़ी बात करेंगे जिनको कोई जानता नहीं है, पर जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने जितनी सामर्थ्य है वो देश के लिए कुछ करते हैं, पर जिनका अखबारों में कोई नाम नहीं है, आम पब्लिक नहीं जानता, पर वो देश को आगे बढ़ाने में अपने लाइफ को लगाते हैं, एक पॉजिटिव वे में लगाते हैं। और शायद ये भाव ज्यादातर लोगों के अंदर आए कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, पूरे दुनिया को बदलने के लिए नहीं, पूरे देश को बदलने के लिए नहीं, जितनी मेरी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, मैं अपने आसपास की दुनिया में अगर थोड़ा भी बदलाव लाऊं तो इनडायरेक्टली वो अपने देश को लाभ करता है, अपनी ह्यूमैनिटी को लाभ करता है। तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, आज वैसे समय कम है, मैंने काफी इसमें 15-20 दिन से रिसर्च किया था, तो टॉपिक तो बड़ा था पर समय कम मिला है, तो जितना कर सकते कुछ लोगों की कोशिश करूंगा, पैन इंडिया के, पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से कुछ लोगों के बारे में आपके सामने बताऊं। देवियों सज्जनों, इनको देखिए, ये आलोक सागर जी हैं, जो 26 साल से ट्राइबल्स के बीच में काम करते मध्य प्रदेश में। अब उनके शक्ल देखते होंगे, उनका घर है जिसमें वो बैठे हुए हैं, चटाई और उनके परिचय है, ये आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे। आलोक सागर जी, प्रोफेसर आलोक सागर एंड एक्स आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर, लेफ्ट हिज लिक्रेटिव जॉब इन 1982 टू सर्व ट्राइबल्स, वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन एंड स्टे कनेक्टेड टू नेचर। वो आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स हैं और आपके ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से भी वो पीएचडी हैं, टेक्सास से। दिल्ली आईआईटी में काम किया, बाद में उनको लगा कि इससे ज्यादा अच्छा काम मैं कुछ कर सकता हूं, वो छोड़ छाड़ के चले गए ट्राइबल एरिया में, मध्य प्रदेश के गांव कोचामो करके, जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग किरोसिन की डिबिया जला करके रहते हैं, ये उनका झोंपड़ी है जहां वो रहते हैं और आदिवासियों की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह खाना खाते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उसी भाव से वो रहते हैं। और पूरी जिंदगी वो जंगल में, जहां रिमोट एरिया है, उनको एजुकेट करने में, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रखी है और 26 साल से करते हैं। किसी को पता भी नहीं था, पता चला क्योंकि ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया है वो नक्सल एरिया होता है, जहां नक्सली मिलिशिया काम करते हैं, पुलिस वाले बार बार सर्च करते रहते हैं। कभी किसी इलेक्शन के प्री इलेक्शन रेड के थ्रू पुलिस ने उनको पकड़ा, सोचा ये कोई बाहर का आदमी है, पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन में, पूछताछ किया तो मजबूरन उनको अपनी आइडेंटिटी देना पड़ा, तब जाकर पुलिस ने उनको छोड़ा। तो व्यक्ति किसी सोशल रिकॉग्नाइजेशन को चाहत के बिना अपने आप को त्याग करके किसी ट्राइबल एरिया में पूरी जिंदगी बिता देता है, ये प्रोफेसर आलोक सागर है। ये मध्य प्रदेश की घटना थी। आपको ले चलते हैं तमिलनाडु में, ये है कल्याण सुंदरम जी। कल्याण सुंदरम हाईली एजुकेटेड हैं, लाइब्रेरियन है, कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। हर महीने जितना भी तनख्वाह मिलता था वो सारा तनख्वाह वो गरीबों के लिए लगाते थे और अपनी गुजारा करने के लिए और शाम को एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करते थे, किसी रेस्टोरेंट में इधर उधर काम करते थे, उससे जो पैसा मिलता था वो अपना खर्च उठाते थे, पर दिन भर जो ऑफिशियल उनका जॉब था उसकी सैलरी को वो डोनेट कर देते थे। रिटायर्ड होने के बाद जो उनको पेंशन मिला, करीब करीब 10-20 लाख का जो भी पेंशन मिला, वो भी सब उन्होंने डोनेट कर दिया। खुद अपने घर में नहीं रहते थे, घर बेच के रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में, झोंपड़पट्टी में रहते थे, ये समझने के लिए कि गरीबों का दर्द क्या है दूर किया जा सके। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन, लोगों से हेल्प लिया, काम करते हैं। लाइब्रेरी साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, हिस्ट्री में एमए कर रखा है, लिटरेचर में एमए कर रखा है। जिन लोगों के, ऐसा नहीं है कि जिन 4-5 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा वही सिर्फ देश के लिए कुछ करते हैं अपने अपने एरिया में। देवियों सज्जनों, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल अपने अपने स्तर पर काम करते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। बाई चांस कभी किसी को पता लग जाता है, कभी कभी फॉरेन मीडिया को ज्यादा पता लगता है, देशी लोगों को कम पता लगता है। और ऐसा नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास है, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं हाईली, बहुत अनपढ़ लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत धनी लोग भी हैं, हर एक के अपने अपने टाइप का कंट्रीब्यूशन है। मिलिए इनसे, ओंकारनाथ शर्मा जी दिल्ली से हैं, इनको मेडिसिन बाबा के रूप में जाना जाता है। आप घर घर घूम करके जो मिडिल क्लास या हाई क्लास के लोग हैं उनसे मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, जिनके बच गया है मेडिसिन वो कहते हैं फेंकना नहीं, अब वो मुझे दे दो। वो एक मेडिसिन बैंक खोला है, देवी सज्जनों बड़े गरीब आदमी है, वो एक मेडिसिन बैंक खोलते हैं गरीब लोगों के लिए, जो अनयूज्ड मेडिसिन है वो खुद कलेक्ट करते हैं। वो पैरों से विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उनका पैर टूटा हुआ है। पैसा इतना नहीं है कि वो कोई गाड़ी से जाते हैं, वो पैदल चल के जाते हैं। सिटी वो ओल्ड से, जो सीनियर सिटीजन जो ओल्ड होने के कारण दिल्ली सरकार का डीटीसी बस में जाने के लिए पास मिलता है, सस्ता पास, उस पास को यूज करके बसों में मेट्रो में घूमते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, लाखों गरीबों की वो सेवा करते हैं। उन्होंने खुद अपना जो टूटा फूटा घर है उसमें एक रूम में मेडिसिन स्टोर बना रखा है, वो वहां कलेक्ट करते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेज करते हैं कौन सा मेडिसिन है, उसका एक्सपायर डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर नाम क्या है, किस बीमारी के लिए है, फिर वो लोगों को बांटते रहते हैं और घर घर में घूम करके बांटते हैं। और रोज 5-6 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, कभी मेट्रो ट्रेन पकड़ते हैं, कभी बस पकड़ते हैं। वो अपने गले में वो हमेशा कपड़े भी पहनते हैं, भगवा कपड़े, और उसमें उनका फोन नंबर लिखा होता है कि जिसके पास बचा हुआ मेडिसिन है मुझे कॉल करो, मैं आकर के ले जाऊंगा आपके घर से। ओंकारनाथ शर्मा जी मंगलपुरी, मागलापुरी, पालम, न्यू दिल्ली से। अदेवियों सज्जनों, उनकी घर की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। उनका एक बेटा है जो मेंटली चैलेंज्ड है, उनकी पत्नी बीमार है पर सपोर्ट करती है, पर वो करते हैं। वो पूरे देश को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। जहां जितनी मेरी एबिलिटी है, मैं जितना कर सकता हूं, मैं अपने आसपास अगर कुछ बदलता हूं तो देश बदलता है। देवियों सज्जनों, ये है सिंधुताई सबकल। इन्हें अनाथों की मां कही जाती है, मदर ऑफ ऑर्फन्स। ये हजारों अनाथ बच्चों को, जो ऑर्फन बच्चों को पालती हैं अकेली। और इनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई पढ़ी लिखी शहर की नौकरी करने वाली पैसा कमाने वाले लिए नहीं, बहुत ही गरीब घर की, गांव की, जिसकी शादी 9 साल के 12 साल के उम्र में एक ग्वाले से, गाय चराने वाले से कर दी गई थी। और उसने इतना जुल्म किया, प्रेग्नेंट औरत को, 12-13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट थी, उसको घर से निकाल दिया। उसके मां बाप ने भी पास नहीं रखा क्योंकि बड़े गरीब थे और एक मेंबर को घर में पाल नहीं सकते थे। सुइसाइड करने के लिए जा रही थी, रास्ते में ये अनाथ बच्चों को देखा जो रास्ते में भटकते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उसका मन बदला कि मरने से अच्छा क्यों ना मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। और उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, संघर्ष किया। आज हजारों बच्चे को वो पालती है, अनाथ बच्चों को, और उनके पाले हुए बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोसाइटी में अलग अलग फील्ड में हैं। और आज भी वो वही काम करती है। और महाराष्ट्र में वो अनाथों की मां के रूप में जानी जाती है। उनका नाम है सिंधुताई सबकल। महाराष्ट्र से देखिए, ये बिहार के हैं, हो सकता है कुछ लोग इनको जानते हो, आनंद कुमार जी। मैथमेटिशियन है, नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन में लिखते हैं, बिहार में गरीब घर के हैं, हाईली टैलेंटेड थे। उनको अमेरिका में पढ़ने के लिए आना था, एडमिशन भी हो गया था, पर पैसे नहीं थे तो नहीं आ पाए। मैथमेटिक्स का शौक था तो घर में पूरा करते थे पढ़ाई, पापड़ बेचते थे, आज भी पापड़ बेचते हैं वो, उनकी मां, उनके बच्चे। पर करते क्या है, आज वो बहुत फेमस वेस्ट नोन है, उन्होंने एक सुपर 30 प्रोग्राम चलाते हैं। वो क्या चीज है? क्योंकि वो खुद गरीबी में थे, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके मन में आया कि जो बच्चे गरीब घर के होते हैं पर टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उनको कोच किया, पढ़ाया, जैसे भारत में ट्यूशन होता है, फ्री में कोच किया। बिल्कुल गरीब घर के, शर्त यह है कि गरीब घर का होगा, जिसके माँ बाप बहुत गरीब हो, मजदूर हो, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को चुनते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो अपने घर में उनको रखते हैं, उन बच्चों को। वो 30 बच्चों को ही लेते हैं, क्योंकि वो 30 बच्चों को पाल सकते हैं। उसकी माँ खाना बनाती है वो 30 बच्चों के लिए, उनके भाई दोनों मिलके कमाते हैं, उन 30 बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, कोच करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, हर साल 30 बच्चों को कोच करते हैं, 30 के 30 बच्चे इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, और उसमें 28 बच्चे IITs में क्वालिफाई करते हैं। (coughs) 2002 से आज तक 16 साल से लगे हुए हैं। वो घर देख सकते हैं, वो किसी से डोनेशन नहीं लेते, उनके वेबसाइट भी है। और आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, टाइम आपके अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज में भी वो आ चुके हैं। डिस्कवरी, अब वो डिस्कवरी चैनल, BBC चैनल, इन पे डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग इनसे मिलते हैं, उनके मिलने के लिए आते हैं, उनके पटना में आते हैं, पर एक पैसा किसी से नहीं लेते। वो चाहते हैं कि मैं अपने मेहनत से इन बच्चों को पालूं, मेरे सामने उनको बड़ा करूं। तो वो खुद पढ़ाते हैं, उनके साथ आप धीरे धीरे काफी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं जो इस तरह के मोटिवेटेड हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग, लॉजिंग एंड फूड। तो जो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर फैमिली के हैं, और आज तक पिछले 18 साल में उन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चे, कितना भी टैलेंट हो, ज्यादा से ज्यादा वो मैट्रिक पास करते, कॉलेज तक जा पाते नहीं पाते, जाते भी कोई क्लर्क, पियन, चपरासी बनते। आज वो भारत के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। USA से लेकर ब्रिटेन तक उनके स्टूडेंट, उनके द्वारा पाले गए बच्चे, पढ़ाए गए बच्चे फैले हुए हैं। हो सकता है ह्यूस्टन में भी कोई उनका पढ़ा हुआ बच्चा मिलेगा, क्योंकि वो हाईली टैलेंटेड और क्वालिफाइड बच्चे होते हैं। देवियों सज्जनों, आपको ये लगता होगा ये आपके ही कोई बेटी की तरह है, बहुत अरिस्टोक्रेट है, बहुत एजुकेटेड है, छवि रावत या छवि राजावत। और ये सच भी है, तो आप जैसे परिवार से ही बिलोंग करती है, बहुत पढ़े लिखे और धनी परिवार से। उसकी सारी पढ़ाई महंगे स्कूलों में हुआ है, बेंगलुरु के ऋषि वैली रेजिडेंशियल स्कूल, दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज, MBA में टॉप किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पुणे। करती क्या है? वो सरपंच है। मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी मैनेजरिंग पोस्ट छोड़ के उसने चूज किया कि जो मेरा एंसेस्टर गांव है राजस्थान में, जयपुर से 60 किलोमीटर दूर एक सोड़ा करके गांव, कि मैं इस गांव के लिए कुछ करूं, क्योंकि हजारों सरकारी स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। जिस तरह की पढ़ी लिखी है, जिस तरह की पर्सनालिटी है, वो कोई MP MLA के लिए भी, पॉलिटिक्स में भी जाना होता तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली भी बन सकती थी। पर वो उसका सोशल रिकॉग्नाइजेशन पाने का इंटरेस्ट नहीं था, कुछ करने का था। और उसने चुना तो सरपंच बनने के लिए, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सरपंच पोस्ट, जो सरपंच मतलब चीफ ऑफ विलेज, गांव की मुखिया का पद चुना। और तब से काम कर रही है वो, गांव में सोलर पावर लाना, साफ पानी लाना, रोड बनाना, घरों में टॉयलेट बनाना, बैंक यूज करना सिखाना, हो सकता है हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए ये सब अननेसेसरी चीजें हैं, पर ये सब चीजें गरीब के गांव में, अनपढ़ गांव में लग्जरी होती है। टॉयलेट में जाना एक लग्जरी होती है, घर में बिजली आना ये लग्जरी होता है, ऐसी चीजों को करने के लिए काम करती है छवि राजावत जी। इसी तरह और एक लड़की देखिए, खूबसूरत यंग लड़की, वो भी आपके हमारे तरह, वो भी सरपंच है मध्य प्रदेश की बरखेड़ी गांव की, टेक्सास की, इसका भी कनेक्शन टेक्सास से है जी। आपका टेक्सास बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के कारण। तो उसने शी रिटर्न फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, जो टेक्सास में रहती थी, वापस गई। एक बरखेड़ी गांव है मध्य प्रदेश में, बरखेड़ी अब्दुल्ला विलेज, वहां जाकर काम शुरू किया, वही सरपंच बनी। और मैं आपको दो, सिर्फ मैं, मेरे पास समय लिमिटेड होने के कारण मैंने चुना कम है कि आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव वे में कुछ बताऊं। ऐसा नहीं कि इतने ही लोग हैं वह यही काम करते हैं, हजारों में नहीं, लाखों में लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। सी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस, रिटर्न टू हर नेटिव विलेज इन इंडिया, रिफ्यूजिंग जॉब विद हेप्टी पैकेज इन द यूएस। इन नवंबर 2014 सी डिसाइडेड टू टेक द इलेक्ट्रल प्लंज एंड वॉज इलेक्टेड द सरपंच बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव। By ensuring the effective implementation of government schemes on ground, young है, 27 years old है, और चाहती है कि इस गांव को, इस पंचायत को पूरी तरह बदल दिया जाए। देवियों सज्जनों, ये एक दूसरे तरह की पर्सनैलिटी है, सोनम वांगचुक। अगर आप में से कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, थ्री इडियट के कैरेक्टर है, जो पूरी ओवरऑल मूवी है ये इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, लाइफ नहीं है, इंस्पायर्ड मूवी है। ये लद्दाख के हैं, जम्मू कश्मीर के। मैंने आपको कहा था कि मैं देश के अलग अलग एरिया को कोशिश करूंगा आपके सामने रख पाऊं। वैसे तो प्रोफेशनली ये इंजीनियर हैं और बहुत ही इनोवेटिव इंजीनियर है, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, पर जो काम उन्होंने किया है वो किसी कंपनी में, किसी कॉरपोरेट फील्ड में गवर्नमेंट नौकरी करके नहीं करते। वो क्या करते हैं, इज ए फाउंडर ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में, लद्दाख एक बहुत ही कोल्ड डेजर्ट एरिया है, बहुत ही सूखा, सर्दी में बर्फ गिरता है, गर्मी में एक घास भी नहीं होता है। वहां पढ़ाई की कोई ज्यादा साधन नहीं था, वो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम के पढ़ने करके बच्चे जो निकलते हैं बेरोजगार होकर घूमते हैं। अगर थ्री इडियट्स देखा होगा तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो उन्होंने एक इनोवेटिव वे में स्कूल बनाया, आजकल वो यूनिवर्सिटी जैसा उसकी रिकॉग्नाइजेशन है, जहां बच्चों को ये डे टू डे की क्लास, होमवर्क, ये फालतू की चीजें नहीं कराया जाता है, तोता रटने वाले तोतों की तरह, जहां बच्चों की एबिलिटी, उनके एटीट्यूड, उनकी जो भी इनहेरेंट नेचर को देख करके उसको डेवलप किया जाता है प्रैक्टिकल वे में, कि वो लाइफ में क्या कर सकता है, ये नहीं कि कौन सी नौकरी कर सकता है, ये कि वो किस काम को खुद कर सकता है जिससे उसकी रोजगार भी चले और कुछ आगे बढ़ सके। आज वहां दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग रिसर्च करने आते हैं, समझने के लिए आते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा जो योगदान है लद्दाख में वो है आइस तूपा। ये आइस तूपा क्या है कि एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना होता है, क्योंकि जो लद्दाख है वो एक ओवरऑल डेजर्ट एरिया है, 3500 मीटर्स अल्टीट्यूड पर है, बहुत कम बारिश होती है, ठंड में बहुत बर्फ पड़ता है, जब स्प्रिंग आता है तो बर्फ पिघल करके सब निकल जाता है, तो सूखा को सूखा बना रहता है। वहां फार्मर खेती करे तो मुश्किल होता है, हमेशा गरीबी में जीना पड़ता है, तो उनको आइडिया आया, वैसे आइडिया उनका नहीं है, उससे पहले भी लोगों ने वहां ट्राई किया था और इन्होंने इसको आगे बढ़ाया कि सर्दी में जब बर्फ पड़ता है वो नदी के आसपास की जो नदियों में पानी, उसको अगर किसी तरह उस पानी को गांव तक लाया जा सके, पाइप के द्वारा, और उसको स्प्रिंकल कराया जाए बिलो टेम्परेचर में, वो बर्फ होकर के जमता है, और जो स्प्रिंग या गर्म का सीजन, गर्म का मौसम आता है तो सारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं, पर वो पिघला हुआ नहीं पिघलता नहीं, धीरे धीरे पिघलता है, और उस पानी को वो अपने खेती के लिए यूज करते हैं या पीने के लिए दूसरे रूप में यूज करते हैं। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। ये आप देखेंगे, ये जो दिख रहा है यूज्ड फॉर स्टोरिंग विंटर वाटर विच अदरवाइज गोज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ जियंट आइस कॉन्स एंड स्तूपाज। स्तूपा नाम इसीलिए दिया क्योंकि लद्दाख बौद्ध क्षेत्र है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जब तक लोगों के साथ थोड़ा रिलीजियस टच मत लगो और लोग आसानी से कोई नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्होंने इनका नाम आइस स्तूप बनाया। फ्रॉम द स्ट्रीम्स वाटर एंटर्स अंडरग्राउंड द पाइप, ये उसकी जो प्रोसेस है, मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जान सकते हैं, यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। द प्रेशर इन द पाइप मूव द वाटर अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, द वाटर इज एक्सपोज टू द कोल्ड एयर 20 डिग्री, इट फ्रीजेस, नो इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, एवरीथिंग वर्क्स विथ ग्रेविटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वांगचुक का प्लान है कि ऐसे 20 आइस स्तूप अगर बना दें तो 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर दे कैन सेव फॉर समर। तो पढ़ाई से लेकर के लोगों के एग्रीकल्चर को ध्यान रख करके नए नए आइडियाज लाते हैं। ये एक तमिलनाडु से हैं, अरुणाचलम मुरुगनाथम। मीट द मैन हु स्टार्टेड इंडिया सैनिटरी नैपकिन्स रिवोल्यूशन, ए ट्रू विजनरी, जो बहुत कम लोग सोचते हैं, सोचना तो दूर की बात, लोग खास करके इंडियन लोग इस पर बात करना भी, पति पत्नी भी बात नहीं करते इन टॉपिक पर, अरुणाचलम हिस्ट्री अलग है, आप जाकर के ढूंढ सकते हैं कैसे, मैं इतने सारी चीजें नहीं बता सकता, टाइम की मजबूरी है। तो अरुणाचलम मुरुगनाथम बिगन द सैनिटरी पैड रिवोल्यूशन इन इंडिया, आजकल उन पर एक मूवी भी आ रहा है। Venturing dangerously close to a topic most men and women both steer clear of, he was shocked when he discovered that women in rural India cannot afford hygienic sanitary napkins. Instead, they are forced to use cloth, sand, leaves and even ash, जिससे उनको कैंसर से लेकर हजारों बीमारियां होती हैं। और उन्होंने मूवमेंट चलाया, वो अपने घर में अपनी पत्नी को देख करके, उसकी दुर्दशा को देख के समझ नहीं पाए, बाद में उनको लगा कि चेंज। आज पूरे भारत भर में ये एक मूवमेंट बन रहा है और अलग अलग और एनजीओ आ रहे हैं इस मूवमेंट को चलाने के लिए कि गांव में गरीब लोगों में ये सस्ते में कैसे बनाया जाए, इन लोगों को बांटा जाए। और ऐसा नहीं कि आज सिर्फ अरुणाचलम ये काम करते हैं, ऐसे और भी हजारों संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं जो ये कोशिश करते हैं। देवियो सज्जनों, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपके सामने रखी, छोटी ये इनको कोई नहीं जानता, ये हिस्ट्री में कहीं किसी में आपको पता भी नहीं चलेगा, पर ये सब लोग हमारे आपके तरह छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, धनी हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह के लोग हैं, पर इनके अंदर एक भाव था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। पर देश के लिए करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरे देश को बदलो, जहां पर हैं, जैसे भी हैं, जितनी एबिलिटी है, ईश्वर ने जितना सामर्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, पैसा दिया है, जो भी दिया है, शक्ति दिया है, उसको एक लेवल पर काम में आए और देश को, समाज को बदलने के लिए कोशिश करे। देवियों सज्जनों, देश कोई मिट्टी पत्थर का, नदी समुद्र का कलेक्शन नहीं होता है, उसमें रहने वाले लोग, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनकी स्वभाव, उनका खान पान, ये सब मिलके देश बनता है। हम बाहर रहते हैं पर उसके बावजूद भी हमारे रूट के साथ कनेक्शन है। कभी मौका मिले आपको बताएंगे, हजारों हजार एनआरआई लोगों का देश में कंट्रीब्यूशन है, और आजादी के आंदोलन से आज तक भी जितने भी बड़े बड़े भारत में मूवमेंट चले हैं और जो भी अच्छा काम हुआ है, उसमें एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस का कोई कम नहीं, उल्टा सबसे ज्यादा रहा है। तो ये भाव इसीलिए कहने का था कि व्यक्ति कैसा भी हो, कहीं भी हो, वो अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, देश को बदलने के लिए। इंस्टेड ऑफ कि हम कंप्लेन करें कि क्या क्या बुराइयां है देश में, बुराई करना जरूरी है, तो जब तक हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होता है, पर हम चाहें तो हम कुछ बदलाव ला सकते हैं लोगों के जीवन में। इसी भाव के साथ मेरे साथ चाहें तो एक बार मिलकर बोलिए, ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त का अंतिम मंत्र है, संगच्छध्वम्, बोलिए, संवदध्वम्, संवो मनांसि जानताम्, देवाभागम् यथा पूर्वे, समजानाना उपासते। मे यू मूव टुगेदर, स्पीक टुगेदर इन वन वॉइस, लेट योर माइंड्स बी ऑफ वन एकर्ड, एंड लाइक द एंशियंट सेजेस, मे यू एंजॉय योर असाइंड शेयर ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप सबको भारत के रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।